ओम शांति। अभी हम कल मम्मा का स्मृति दिवस है, तो मम्मा का स्मृति दिवस के स्पेशल मम्मा का मुरली जो कल चलने वाले है, तो उसके उस मुरली को हम रिवाइज करेंगे। तो इस मुरली को तीन पार्ट हमने डिवाइड किया है, तो पहला पार्ट को मैं रिवाइज करूंगी, बाकी और दो डायलॉग रिवाइज करेंगे। ये मम्मा का मुरली था, डेट 24 अप्रैल 1965 का। तो इस मुरली का हेडिंग है ज्ञान का तीसरा नेत्र, विजडम ही लाइफ में सुख और शांति का आधार है। मुरली का हेडिंग है ज्ञान का तीसरा नेत्र, विजडम ही लाइफ में सुख और शांति का आधार है। तो ये जो मुरली है, मम्मा ने एक गीत से शुरू किया है। जैसा पहला वो गीत था, आज अंधेरे में है हम इंसान और ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। बहुत अच्छा गीत है ये। भटक रखे है हम, राह दिखा दे भगवान, राह दिखा दे। बहुत अच्छा गीत है। तो इस गीत को मम्मा ने विस्तार किया है। जैसे गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, फिर भी अभी दुनिया समझते हैं रोशनी में है। तो 1965 में मम्मा कह रहे हैं कि उस समय मनुष्य चांद आकाश सितारे तक पहुंचते हैं, तो वो लोग समझते हैं वो दुनिया रोशनी में आ गई है। 1965 में साइंस का डेवलपमेंट उतना था, अभी 2018 तक साइंस कितना डेवलप हुआ है। अभी इस साल तो स्पेस इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो इस साल 186 स्पेस क्राफ्ट रॉकेट जो भी है भेजने के लिए प्लान है। पिछले साल 91 स्पेस क्राफ्ट भेजा है, इतना डेवलपमेंट हुआ है। और 1965 में क्या है, पहला 1959 में पहली बार लूना 3 एक सैटेलाइट था, उसको मून तक भेजा था, वही फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद 65-66 में लूना 9 ऐसा कुछ था, और तो उस समय ऐसा है। लेकिन अभी क्या है, साल में कितना जा रहा है, एक साल में तो इतना साइंस डेवलप हुआ है। हाँ, रोशनी और भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ दुख भी है। और क्या है, सारी दुनिया स्मार्ट वर्ल्ड बन रहे है, स्मार्ट होम आ गया है। घर, अगर घर के अंदर जा, अभी तो पहला हम स्विच यूज करते हैं, लेकिन अभी क्या है, जस्ट हम अंदर जाना है, सेंसर ही तुरंत हमको सेंस करके लाइट अपने आप चालू होता है। अगर कमरा से बाहर आएंगे तो अपने आप बंद हो जाता है। सब कुछ ऐसा है, जो भी मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सेंसर अपने आप बंद होता है, अपने आप चालू होता है। सिर्फ हम अंदर जाना है, बाहर आना है, ऐसा जा रहा है। और कार भी आ गया है ना, एक कार हॉवर कार, वो अपने आप सेंसर के हिसाब से जीपीएस में, जस्ट हम उसको कमांड देना है, टेक मी टू होम, टेक मी टू ऑफिस, ऐसा कमांड देना है, बस वो अपने आप चलता है। और उसमें एक्सीडेंट्स भी कम है, क्योंकि अगर कुछ सामने से गाड़ी आएंगे तो 3 फीट पहले ही वो अपने आप रुक जाता है, पूरा मैग्नेटिक वेव से वो चलता है। और ये भी इससे भी दुख है, हम देखेंगे कैसे। और एक और देखना है तो ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी है, ये तो 2003 में ही आया है, 15 साल से ही है। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया है स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है, इन्वेंट किया है। लेकिन कुछ लोगों को उससे, वो एडिक्शन से बाहर आए हैं, लेकिन बच्चे लोग भी यूज करते हैं ना, उन लोगों को अपोजिट इफेक्ट, उन लोगों को टोबैको स्मोकिंग करने के लिए ऊंचा ज्यादा होते जा रहा है। और ये वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में वो जो एरोसॉल यूज करते हैं ना, वो जो लिक्विड में, अभी इस साल इस फ़रवरी में साइंटिस्ट ने देखा है कि उस एरोसॉल में कितना केमिकल्स है, आर्सेनिक, लेड और मैग्नीशियम, ये सब है। ये सब चीज हमारा ब्रेन को डैमेज करता है और कैंसर भी होता है। 15 साल के बाद इस साल फ़रवरी मंथ में ये लोग ने इन्वेंट देखा है, ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से नुकसान है 15 साल के बाद। तो और भी है, स्मार्ट वर्ल्ड में हम सबको पता है, ऐसा स्मार्ट मिरर भी आ गया है, जो सुबह सुबह हम देखते हैं, आईना देखते हैं, वो भी स्मार्ट मिरर आ गया, हम मोबाइल देखने की भी जरूरत नहीं है। मिरर में देखते हैं कि हम तैयार होके उसमें साइड में मैसेजेस आता है, आपका ये मैसेज है, ये मेल है, आपका आज का टास्क ये है, ऐसा स्मार्ट मिरर भी आ गया है अभी। तो जो भी हमको हाथ में रखने का जरूरत भी नहीं है, ऐसा आ गया है दुनिया। फिर भी ये सब चीज से क्या है, लोग समझते हैं इससे हमको सुख और शांति मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्यों इतना साइंस डेवलप होते जा रहे, क्योंकि उन लोगों को जो चीज लाइफ में चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसा जो भी इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ साथ नुकसान भी है और लोग संतुष्ट नहीं हो रहे, इसलिए आगे से कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। अगर लाइफ में एक चीज से सुख और शांति मिल गया तो ये रुक जाना चाहिए ना, लेकिन अभी तक भी क्या है, और से आगे 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 चलते जा रहे, साथ साथ दुख है। तो इसको कहा जाता है अंधेरा। ये सब करने के बाद भी लोग भगवान को बुलाते हैं और गीत गाते हैं, ऐसा आज अंधेरे में है हम इंसान। तो यही अंधेरा है, लोगों को पता नहीं है अंधेरा मतलब क्या है, वो भी पता नहीं है, फिर भी वो लोग सोचते हैं रोशनी में है हम जा रहे हैं, और भगवान को बुलाते, भगवान को बोलते हैं हम, आप अंधे की लाठी है तू। तो अंधे किस में है वो भी पता नहीं है लोगों को, और सोचते हैं भगवान को बुलाते हैं, लेकिन कोई और इंसान के साथ ही सामने जाते हैं, साधु संत। अभी कितना लोग आए हैं, प्रेमानंद, नित्यानंद, क्यों ये सब लोग आनंद 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 रखते हैं, क्योंकि सिर्फ आनंद नाम की वर्ड, वो अक्षर की ऑपोजिट वर्ड नहीं है, तो इसलिए लोग सोचते हैं इनके पास जाएंगे तो हमको आनंद मिलेंगे, सुख शांति मिलेंगे, फिर भी क्या है, नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो लोग एक्चुअली भगवान को बुलाते हैं लेकिन कोई और इंसान के साथ जाते हैं, किनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, इनके पास जाते हैं, इसलिए अभी तक किसी को सुख और शांति नहीं मिला है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली जो नेत्र चाहिए वो ज्ञान का नेत्र नहीं है, इसलिए किसी और को देख के उनके पास जाते हैं, क्योंकि खुद को नहीं जाना है, भगवान कौन है वो भी नहीं जाना है। तो इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र है, यही मम्मा कह रहे, यही विजडम है। विजडम मतलब सिंपल वर्ड में बोलना है तो, कहना है तो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो हमको ज्ञान मिला है, जो भी है थोड़ा सा भी ज्ञान, उसको कैसे हम जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं विथ कॉमन सेंस और इनसाइट, खुद को कैसे उसको हम कॉमन सेंस से यूज करते हैं और कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहते हैं, यही विजडम है, सिंपल है, लेकिन वो लोगों को उसको बड़ा समझते हैं। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। और भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है तीसरा नेत्र को, इधर दिखाया है। अगर आज कुछ बच्चे ऐसा पैदा हुआ, एक्स्ट्रा हाथ और एक्स्ट्रा पैर और तो एक्स्ट्रा आंख, और दो बच्चे एक साथ पैदा हो तो क्या करते हैं, तुरंत देख के घबरा हो जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ करो, ऑपरेशन करो, इसको ठीक करो। अगर खुद का बच्चा ऐसा है तो वो अबनॉर्मल है, लेकिन भगवान का चित्र में सब कुछ है, तीसरा नेत्र है, चार भुजाएं हैं, 10 सिर है, सब कुछ, यही यही इसको कहते हैं अंधे। लोग नहीं समझते, अगर खुद को आएंगे तो वो अबनॉर्मल है, लेकिन भगवान का चित्र में, चित्रकार जो भी बनाते हैं वो भगवान समझ के करते। अगर घर में ऐसा बच्चे आएंगे तो खुश होना चाहिए ना, अगर मेरा घर में एक देवता पैदा हुआ है ऐसा खुश होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते। इसको कहा जाता है अंधेरा, अंधे है भगवान नहीं समझते। और ये चतुर्भुजा क्या क्यों दिखाया है, और 10 सिर रावण को क्यों दिखाया, वो भी हमको पता है। चतुर्भुज माना दो भुज नर की, दो भुज नारी की, वो तो आप सब जानते हैं। और 10 सिर भी क्यों रावण को दिखा है, 5 विकार स्त्री की और 5 विकार पुरुष की, वो भी हम जानते हैं। लेकिन ये सब है, मम्मा कह रहे हैं कि देवता और असुर, ये है मनुष्य की क्वालिफिकेशन, उनका वो जो पवित्रता है, गुण है और श्रेष्ठाचार, ये सब देखे। ये अगर देवता है तो वो मनुष्य की क्वालिफिकेशन है, अच्छा है, पवित्र है, श्रेष्ठाचारी है, तो वो देवता है. अगर डिस्क्वालिफाइड है, अपवित्र है और भ्रष्टाचारी है और अवगुण संपन्न है, तो वो असुर है. तो ये है मनुष्य का क्वालिफिकेशन, ऐसा मम्मा ने कहा बोला है. और देवता की क्वालिफिकेशन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम. और असुरों का वो तो ज्यादा है, आपको पता है, बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड है. अभी लोग में हम देखते हैं, तो यही मनुष्य का क्वालिफिकेशन है, देवता और असुर. और लास्ट में मम्मा कह रहे कि ज्ञान का नेत्र के बारे में बोला है, थर्ड पैराग्राफ में. इसमें मम्मा बोले ज्ञान का तीसरा नेत्र से ही हमको लाइफ में सुख और शांति मिल सकता है. अब लेकिन लोग क्या कहते हैं, और भी ढूंढते, कोश में तक जाते हैं, कोशते कोशते अभी तक गए हैं, अभी इस स्टेज में गए हैं कंपटीशन में, कंपटीशन वर्ल्ड में जा रहे हैं. अगर दूसरा कंट्री ये किया तो मैं उससे ज्यादा करना है, और उनको कैसे मैं रुक दूं, तो इसके लिए बॉम्ब्स भी बनाते हैं. पहला तो साइंस अच्छी रीति में था, अभी चलते 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 अभी इस तरह जान रहे चल रहे. और अभी ये सब चीजें क्या है, विनाश के लिए है. तो ये यही बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि. और विपरीत किसके ऊपर है? परमात्मा से है. अगर प्रीत बुद्धि परमात्मा से है, तो जरूर साइंस को अच्छी रीति से हम यूज कर सकते थे. अगर साइंस को अच्छी रीति से यूज करना है, तो अभी दुनिया का क्या होता था? स्वर्ग. अच्छा, तो इसलिए विपरीत और प्रीत बुद्धि के बारे में पहले ही एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम. तो यही थर्ड पैराग्राफ में मम्मा कह रहे हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीत माना. अभी दुनिया माया से प्रीत है, परमात्मा से विपरीत बुद्धि में है. ठीक है, आगे से भाई जो कन्या करेंगे. ओम शांति
शांति. तो अगले पार्ट में मम्मा ने माया क्या है ये हमको समझाया है. उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है. एक गांव में एक तत्वज्ञानी होते हैं. तो एक शाम को वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जल्दी जल्दी सामान समेटो, जल्दी जल्दी सामान समेटो, संध्या आने वाली है. कुटिया की बैक साइड में पीछे एक शेर खड़ा होता है, तो वो शेर ये सारी बातें सुन रहा होता है. तो सुनते सुनते वो सोचता है कि संध्या जरूर कोई बहुत शक्तिशाली है, जिससे डरकर तत्वज्ञानी क्या कहता है कि जल्दी जल्दी सामान समेटो. तो वो यही विचार करते हुए जंगल की ओर जाता है. अब उसी गांव में एक धोबी तालाब पर अपने कपड़े धो रहा होता है, तो वो भी संध्या की आने वाली होती है, इसलिए जल्दी जल्दी सारा सामान समेटता है. वो भी अपने सारे बोझ तैयार करता है. अब वो लेकर जाने के लिए अपने गधे को ढूंढता है, वो इधर उधर कहीं चला जाता है. तो उसको ढूंढने के लिए जब वो ढूंढता है, तो ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो जाता है. अब वही झाड़ी में कहीं पर कुछ आवाज आती है, तो वो सोचता है शायद यहाँ पर ही गधा होगा. तो अपनी लाठी ले जाकर वो उस झाड़ी में उसको खूब पीटता है. अब अंधेरे में तो उसको पता ही नहीं वहां गधा है या कुछ और है. तो वो शेर की पिटाई करता है. अब पिटता हुआ शेर कांपने लगता है कि ये संध्या कितनी खतरनाक है जो मेरी इतनी पिटाई कर रही है. अब वो शेर के ऊपर सारा बोझ लाद देता है और उसको लेकर चलता है. दूसरा शेर जो दूर से देख रहा था इस पिटते हुए शेर को, तो वो आकर उससे पूछता है कि ये कौन है जो तुम्हारी इतनी जबरदस्त पिटाई कर रहा है? तो बोलता है ये संध्या है. ये वो संध्या है, ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, जो मेरी पिटाई भी करे और मुझे बोझ भी मुझ पर लाद कर ले जा रही है. तो कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार जैसे वहां संध्या है, यहां भी क्या है? माया है, जिसको हम जानते नहीं है, उससे हम अनजान बने चल रहे हैं. तो यहां मम्मा ने भी इसी बात को क्लियर किया कि माया क्या है. वह संध्या के रूप में जो माया थी वहां उसको समझ ही नहीं आया. किसी की मतलब सुनी सुनाए बातों में उसने विश्वास किया और संध्या को बहुत शक्तिशाली समझकर एक मनुष्य से पिट गया, जो शेर इतना शक्तिशाली होता है. उसी प्रकार यहाँ भी हम माया को तरह तरह नाम से पुकारते हैं। जैसे मम्मा ने कहा कि माया जो है, कई लोग समझते हैं कि माया धन संपत्ति में, मैंने ये आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो माया है, धन संपत्ति संसार शरीर इसको माया समझते हैं। परंतु मम्मा ने कहा इसे माया नहीं कहेंगे, तो फिर किसे कहेंगे? तो हम ब्राह्मण जीवन में भी हमने माया को यथार्थ शायद नहीं समझा है, क्योंकि हम भी तरह तरह नामों से उसको पुकारते हैं। जैसे हम लौकिक में थे तो लौकिक में हमारी माता जी, उनका टाइम सेट था योग का, लेकिन जैसे ही लौकिक सिस्टर के बच्चे घर आते थे तो वो उनका योग डिस्टर्ब हो जाता था, तो वो यही कहती थी कि अब ये जब तक ये माया घर में ना तब तक योग नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में हम तरह तरह, कभी योग के समय कोई मेहमान आ जाए तो उसको हम माया समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सेवा आ जाए उसी समय में और सेवा करने जाना जरूरी है परंतु फिर भी योग डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको माया समझ लेते हैं। उसको हम अपना कर्तव्य समझ सकते हैं, अपना फर्ज समझ सकते हैं, क्योंकि भाई जी ने एक बार क्लास में कहा था कि अगर हम, हमारा कर्तव्य हमको पुकारे तो पहले कर्तव्य फर्स्ट है, उसके बाद ज्ञान योग है। तो उस समय हम उसको कर्तव्य समझकर कर सकते हैं, सेवा समझ के कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक बातें हम ब्राह्मण जीवन में भी उसको अनेक नाम दे दिए हैं, उन्होंने माया को एक तरह से बदनाम कर दिया है अनेक नाम देकर। तो आगे मम्मा ने कहा कि माया ये धन संपत्ति आदि तो सुख देने के लिए है, इसमें माया नहीं है। ये तो देवताओं के पास भी थी, धन संपत्ति देवताओं के पास भी थी, शरीर में तो, शरीर तो देवताओं का भी था और संसार में देवता भी रहते थे, परंतु वहां माया नहीं थी। वहां माया थी क्या? तो वहां भी माया नहीं होती है। तो इसी प्रकार मम्मा ने यह क्लियर किया कि ये जो पांच विकार है यही माया है, है ना। तो धन संपत्ति में अगर धन कमा रहे हैं और उसमें अगर लोभ है तो वो क्या है? वो माया है। संपत्ति का अगर अहंकार है, ईगो है, तो उस वो भी क्या है? माया है, है ना। उसी प्रकार शरीर से मोह है तो ये माया है, संसार में आकर्षण है तो ये माया है। परंतु हमने माया को धन संपत्ति को समझ लिया। जैसे बाहर भी कई लोग कहते हैं कि धन, जो धन है ये संपत्ति है, ये संसार एक मोह माया है, है ना? तो यहाँ पर मम्मा ने ये क्लियर किया कि ये सब मोह माया नहीं है, ये तो देवताओं के पास भी था और हमारे पास भी है, बस इसमें एक ही चीज गड़बड़ है, वो है पांच विकार। सत्युग में, स्वर्ग में देवी देवताओं के पास पांच विकार नहीं होते, इसलिए वही धन संपत्ति वो सब हमको सुख देती है। और यहाँ पर धन संपत्ति है परंतु वो विकारों की वजह से इम्प्योर हो गई है, जिससे हमको दुख मिलता है, हम उससे भी दुखी है, संबंध से भी दुखी है। फिर आगे मम्मा ने बताया कि माया से बचने के लिए भी कई फिर सोचते हैं कि शरीर ही छोड़ दे, शरीर से मैं ही ना रहे, शरीर से निकल जाए, संसार को छोड़ दे। पर और कई ये भी कहते हैं कि संसार मिथ्या है ना, झूठा है। तो परंतु मम्मा कहती है संसार झूठा नहीं है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है और ये पांच विकारों ने इसे झूठा बनाया है, इसे झूठा बनाया गया है, मिथ्या बनाया गया है। तो आगे मम्मा ने कहा कि ये संसार को हमको पवित्र बनाना है, और ये संसार स्वर्ग था, पवित्र था, इसमें देवी देवता रहते थे, और देवी देवता रहते थे इसी में एक छोटी सी और एक स्टोरी है। तो उसमें एक नारद जो होता है वो विष्णु जी के पास जाते हैं, और विष्णु जी के पास जाते हुए जाकर उनसे पूछते कि पता नहीं मनुष्य भगवान को याद करना ही भूल गया है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है उनको मिल गया जो वो भगवान को याद करना ही भूल गए हैं? तो विष्णु जी कहते कि आप ही जाके पता कर लो नीचे धरती पर जाकर। तो जैसे नारद नीचे धरती पर आते और खोज करते कैसे भगवान को मनुष्य भूल गया है, तो विष्णु जी क्या करते हैं, वो एक सुंदर कन्या का रूप लेकर विष्णु नारद जी के पास आते हैं। तो नारद जी उसको देखकर आकर्षित होते हैं और सोचते उससे बात करूं, फिर बात करना शुरू करते हैं। तो उनके मन में ख्याल आने लगता है इससे विवाह कर लूं। जैसे ही विवाह का ख्याल आता है तो वैसे ही विष्णु जी सामने प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं देखा क्यों भूल गए मनुष्य भगवान को, इसी वजह से भूल गया है। विकारों की वजह से, आकर्षण की वजह से। तो कहने का भाव यही है कि तो यहाँ मम्मा ने जो क्लियर किया वो यही कि पांच विकार जो है वही माया है, और ये माया ये स्वर्ग में नहीं होती है। जैसे अभी अभी बहन जी ने बताया कि जो क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइड की बात की है ना, कि मनुष्य जो होता है यहाँ अगर क्वालिफिकेशन माने क्वालिफाइड होता है तो वही सतयुग में 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनता है, और वही मनुष्य अगर यहाँ पर डिसक्वालिफाइड होता है तो वह असुर कहलाएगा, उसमें असुरी गुण होते हैं, कोई एक भी अगर असुरी गुण रहेगा तो वह डिसक्वालिफाइड है। तो इस प्रकार मम्मा ने माया का जो एक टॉपिक था उसको क्लियर किया। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज जो कल 24 तारीख की मुरली, उसमें जो थर्ड स्टेप मुझे मिला, जैसे भी भाई जी ने क्लियर किया कि माया के बारे में लौकिक धारणाओं में हमें यही सिखाया गया कि धन माया है, संबंध माया है, लेकिन ये सभी माया नहीं है, क्योंकि धन तो देवताओं के पास भी थे। तो आगे मम्मा ने ये कहा है कि कैसे हम पतित से पावन बने और पावन से फिर पतित, कैसे हम पहले देवता थे और फिर कैसे हम शूद्र बन गए, इसको जानने के लिए मम्मा ने यहां पर कहा है कि स्वदर्शन चक्र, इस चक्र को सहज जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। जैसे महेंद्र भाई ने भी एक दो स्टोरी सुनाई, मेरा भी दिल किया कि एक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि यहां पर जब मैं ये मनन चिंतन कर रहा था कि इसमें मुरली में मातेश्वरी जी ने बोला कि जो जो अलंकार हैं ये ब्राह्मणों के हैं, देवताओं के नहीं, लेकिन सही किया बाबा ने कि कहीं देवताओं को जो अलंकार दिए हैं वो ब्राह्मणों को दे देते तो मुश्किल आ जाती, क्योंकि ब्राह्मण अभी ऐसे हैं कि फिर तो ऐसे ही होता कि अपने पुरुषार्थ के हिसाब से सचिन भाई के पास एक बड़ा शंख होता, हमारे पास छोटी सी है। लेकिन बाबा ने इसलिए ये जो शंख हैं ये देवताओं को दिए, ब्राह्मणों को नहीं। हाँ, तो ऐसे तो ब्राह्मण एक दूसरे को गदा फेंकना शुरू करेंगे। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था कि हाँ, तो वही मैं भी देख रहा था कि यदि ब्राह्मणों को होते तो आज सचिन भाई के पास बहुत बड़ी गदा हो, मेरे पास वो 10 रुपए वाली प्लास्टिक की। तो जैसे मैं लौकिक में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो एक क्लिनिक पे मेरे पास एक भाई आया, तो मैंने अपने क्लिनिक पे बाबा के ही कुछ चित्र ऐसे अपने क्लिनिक पे अपने बेंच के नीचे शीशे के नीचे रखे होते हैं कि कोई मुझसे क्वेश्चन करे और मैं जितना हो सके उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ। और वो एक भाई आए, यूसुफ नाम था उनका, लौकिक में मुसलमान थे भाई। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई जी ये जो चित्र आपने रखा हुआ है एक चक्कर का, ये चक्कर क्या है। तो मैं बाबा की याद में बैठा था, जितना समय था बाबा ने उतना समझाया, उसको सेटिस्फाई करवाया कि जैसे आपके लौकिक में भी मुस्लिम धर्म में एक वर्ड है 786, 786, ये शब्द भी इसी रहस्य को क्लियर करता है कि जैसे शब्द आता है 786, और 6 के बाद क्या रिपीट होता है 7, ये चढ़ती कला और उतरती कला को दर्शाता है। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे, मैंने बोला जैसे देखो भाई जी कि अभी दिन होता है, फिर दोपहर, शाम और रात, ऐसे चार पहर माने गए हैं, ऐसे इस युग के भी चार पहर हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पीरियड है जिसको बाइबल में ग्रेस पीरियड बोला गया, और वो ग्रेस पीरियड अभी जो चल रहा है संगम युग, यह सबसे वंडर युग है। उसने बोला क्या प्राप्ति होती इस युग में, मैंने बोला इस युग में यदि हम स्वयं को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, तो हमें 21 जन्म की 7+8+6=21 21 जन्मों का हमें राज्य भाग्य मिलता है। तो जी जो जो भी बाबा ने उस वक्त बताया, जब मैंने जो बोला, उसके बाद मैं भी बहुत आश्चर्य में हुआ कि ऐसा बाबा ने कैसे युक्ति से उसको समझाया। तो भाई ने आगे मुझे कहा कि भाई जी आपको एक बात बोलूं, मुझे भी लग रहा है कि अभी एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा वंडर टाइम आएगा, उस टाइम में एक ऐसी काठ की बांसुरी बजेगी, उस भाई ने उसको बांसुरी बोला, हम उसको मुरली बोलते हैं। लेकिन जब वो बोल रहा था मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि ये बात तब की है सन 2011 की, जब मैं ज्ञान में एक साल का था। तो उन्होंने भी ये बोला कि एक टाइम आएगा जब कांठ की मुरली बजेगी, और आप बताओ कि वो मुरली कितनी बड़ी होगी जो पूरे विश्व में घूमेगी, और इस उसकी ध्वनि इतनी पावरफुल होगी कि जो लोग स्वयं का दर्शन नहीं किया होगा वो सभी खत्म हो जाएंगे, और जो उस धुन को, उस मुरली को प्यार करेंगे वही नए पैराडाइज में जाएंगे, नए युग में जाएंगे। तो मम्मा ने भी इस मुरली में हमें स्वयं के दर्शन के बारे में, स्वयं का दर्शन वो तो आप भली भांति जानते हो, जैसे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और मातेश्वरी ने ये भी बोला कि कोई आपसे ये मत पूछे कि ये सर्कल कैसे चलता है। जैसे लौकिक में हम बोलते हैं पतित पावन, पतित को पावन करने वाले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और पतित को पावन करना तो एक तो हो नहीं सकता, इसमें दो हैं, बनाने वाला और बनने वाला। और उससे ये भी स्पष्ट होता है कि आत्मा सो परमात्मा, ये जो धारणाएं हैं ये धारणाएं मिथ्या हैं, ये गलत हैं। तो अभी हम सभी को पतित से पावन करने वो स्वयं वो पिता परमात्मा आए हुए हैं। वैसे तो मातेश्वरी जी ने इस मुरली में बोला कि क्राइस्ट जी भी आए, बुद्ध भी आए, जैन धर्म में काफी अच्छे अच्छे और भी काफी महान आत्माएं आई, लेकिन वो कब आए? उतरती कला में। तो ये जो वंडर काम है इस पूरे कल्प का, वो किसका काम है? इस रचयिता का, स्वयं शिव पिता परमात्मा, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फिर से कलाहीन से कलाओं में लाना। अभी बाप स्वयं उपस्थित हुए हैं तो हमें इस ग्रेस पीरियड का पूरा पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि एक वही सुप्रीम सोल है जो इस चक्कर में खुद नहीं आती। बाबा बोलते हैं कि ड्रामा भी मुझसे बड़ा है, क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तो बाबा ने भी ड्रामा को बड़ा माना। और अभी इस संगम में, इस समय में बहुत बड़ी इनकम हो रही है। कैसी इनकम? इनकम आत्मा के अंदर वो बाबा को आने से, जो हमारी खोई हुई शक्तियां थी, हमारी खोई हुई क्वालिटीज थी, कला थी, वो फिर से बाबा हमें दे रहा है। इसीलिए एक से सौ, सौ से हजार, कई गुना ज्यादा वो स्वयं आ रहा है। एक छोटी सी और मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जैसे एक गांव में एक कलाकार आता है और वो बोल रहा है कि मेरे को आपके गांव में एक कठपुतली का डांस जो है 7 दिन का वो करवाना है। तो वो उस गांव में वो कठपुतली का डांस करवाने शुरू कर देता है। सभी लोग गांव के वहां पर आ जाते हैं और एक छोटा सा बच्चा भी आके, क्योंकि बच्चों को बहुत उमंग होता आगे आगे बैठना, ऐसे बच्चे भी आगे बैठे हुए थे और वो सारा नाटक देख रहे थे। उनमें से एक बच्चा था, वो जब ये देख रहा था तो उसके मन में ये आया कि ये लक्कड़ की काठ की कैसे नाच रही हैं। वो अपने पास के भाइयों से पूछता है कि ये कैसे नाच रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि यार क्या बात कर रहा है, आप चुप करके एंजॉय करो, देखो इसको। तो वो क्या करते कि जैसे कठपुतली का जो कलाकार है, जब भी अपनी कला दिखाता है तो सबसे पहले वो एक स्टेज तैयार करता है, स्टेज तैयार करके उस पर लाइट लगाता है और उसको कवर कर लेता है ऊपर से खाली, और स्वयं ऊपर वो उसको ऑपरेट करता है। लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे नाच रही हैं, ये कैसे आवाज कर रही हैं। तो ऐसे में उस बच्चे के अंदर एक उत्सुकता थी, एक उमंग था। उस उमंग की वजह से वो उसको देख तो जरूर रहा था लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहा था। वो ऐसे करते करते अपने बगल के भाई से पीछे जाता है, ऐसे करते एक बुजुर्ग से पूछता है कि ये कैसे नाच रही है। और वो बुजुर्ग भी सोच रही है तो अभी छोटा सा बच्चा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसका। उसने उसको क्या कहा, बेटा मैं आपको बताऊंगा लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। उस बच्चे ने इस बात को ध्यान से सुना, समझा, ध्यान से सुना और समझा, और उन्होंने, बुजुर्ग ने कहा कि आप यदि इस चीज को देखना चाहते हो तो आप जल्दी आओ, जब ये ड्रामा शुरू होता है आप जल्दी आओ, आकर के आके बैठ जाओ, और जो आप देख रहे हो इस लाइट में वो सत्य नहीं है, इससे ऊपर सत्य है, तो आप जल्दी आकर के ऊपर देखने का अभ्यास करो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही करते वो बच्चा एक दिन आया, दो दिन आया, वो बच्चा फिर बुजुर्ग के पास बोला। बुजुर्ग ने बोला अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तुझे बोला समझो, आप अभ्यास करो। तो ऐसे ही करते करते एक दिन आया, जब वो आगे बैठा हुआ था तो उसको कुछ महसूस हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो ड्रामा करने वाला था, वो जो कलाकार था, वो भी रोज क्या देख रहा है कि जो वो कठपुतली का डांस करवा रहा है, तो वो क्या देख रहा है कि सभी लोग इस नाटक को देख रहे हैं, लेकिन एक बच्चा वो मुझे देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर भी उत्सुकता होती है कि मैं उसको जाकर के मिलूं। तो मुझे तो लगता है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई। ऐसे ही इस यूनिवर्सल, ये जो सुप्रीम सोल है, इस परमपिता परमात्मा ने भी ये सृष्टि एक ड्रामा रचा और उस पर लाइट लगा दी, सूर्य चांद सितारे, और स्वयं उससे ऊपर, ऊपर कोई छत नहीं है, छत होती तो क्या होता, भूत आते। हमारे सचिन भाई ने बोला था ना कि यदि छत होती तो, छत होती तो, होती तो भूत आते, ऐसे बोला था भाई जी ने, क्योंकि उन्हें कुछ क्वेश्चन तो करने थे ना। तो ऐसे ही शिव पिता परमात्मा भी इस सृष्टि से अलग होकर के ऊपर से इस ड्रामा को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। मम्मा ने भी इस मुरली में बोला कि आपको क्या मेहनत और पुरुषार्थ करनी है, यही मेहनत करनी है। सबसे पहले तो मेहनत, मुझे तो लगता है कि अमृत वेले उठना ही बहुत बड़ी मेहनत है, तो हमें उठना है, उस बच्चे की भांति अपने अंदर एक उत्सुकता जगानी है, हमें उठना है। ये नहीं कि 3:30 का वो अलार्म बजे, निंद्रा त्यागो उठो, हाँ उससे पहले, समय से पहले उठना है। उठ करके हमें जो भी शिक्षाएं मिली हैं, जो भी हमने 7-day कोर्स किया, उसको थ्योरी को प्रैक्टिकल में ला करके परमात्मा से अपने संबंध जोड़ने हैं, तो सच में वो भी उत्सुकता के साथ आपकी ओर भागा आता है। तो आगे बाप दादा और मम्मा की ओर से अपने सभी मीठे प्यारे बच्चों को याद प्यार, और वरदान था बाप सम्मान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भावा। तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, बाबा के बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं। इसमें बेहद की वृत्ति, बेहद की वृत्ति, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा पला। हमें हमेशा स्वयं के लिए नहीं, कि ये नहीं कि मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो, मेरा, मैं संतुष्ट रहूं, मैं आगे बढ़ूं, ये छोड़ करके स्वयं के लिए नहीं, बेहद की कल्याण भावना रखते हुए सर्व का कल्याण करना है। तो ऐसा करेंगे तभी हम विश्व जीत बनेंगे, नहीं तो हम स्वयं जीत ही बन के रह जाएंगे। तो स्लोगन क्या था कि जो मान अपमान, हाँ, निंदा स्तुति, इससे अलग रहे, उपराम रहे कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। यदि कहा है तो वो आपका शुभ चिंतक है कि आप में कोई ना कोई कमी होगी, इसलिए तो उन्होंने कहा है कि वही हमारा सच्चा मित्र है जो हमें हमारी कमियां बताता है। तो ऐसे बच्चे ही, ऐसे बच्चे ही योगी तू आत्मा कहलाते हैं। तो ये जो मुरली थी, इसमें जो मम्मा ने हमें शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को फॉलो करना ही कल के दिन मम्मा के लिए हमारी संपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।